हर मनुष्य के अंदर पांच विकार होते हुए भी मनुष्य को इनके द्वारा होने वाले नुकसान का उस प्रकार एहसास नहीं होता जिस प्रकार जैसा आप कह रहे हैं। किसी को पता लग गया मुझको कैंसर है तो उसको तुरंत ही एहसास हो जाता है कि मेरा क्या नुकसान होने वाला है। असल में हर मनुष्य का जो सांसारिक जीवन है वो इच्छा से प्रेरित है। स्वाभाविक रूप में उसके अंदर जो इच्छा होती है या दूसरे की देखा देखी जो उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो इच्छाएं उस मनुष्य को बेचैन करती है, अपने जीवन में एक कमी महसूस करता है और उस कमी को पूर्ण करने के लिए या उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए वो जो भी तौर तरीके उसको पता है उनके द्वारा वो उस कामना को पूर्ण करने की कोशिश करता है। यदि पूर्ण हो जाती है उसको एक संतोष की प्राप्ति होती है, यदि अपूर्ण रह जाती है तो उसके अंदर असंतोष पैदा होता है, एक मानसिक क्लेश पैदा होता है। लेकिन उस इच्छा की पूर्णता के कारण जो उसके अंदर संतोष हुआ था वो भी बड़ा ही टेम्परेरी होता है। दूसरी इच्छाएं जैसी उसके अंदर जनरेट होती हैं, पैदा होती हैं, वैसे ही वो फिर असंतुष्ट हो जाता है। तो सांसारिक मनुष्यों का जीवन का चलन ही इस प्रकार का है। इसलिए कोई भी इसको बीमारी नहीं समझता, इसको जीवन समझता है। जैसे कि हम किसी को देखते हैं वो सीए बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसका सोसाइटी में स्टेटस है, एक सम्मान है उसका, वो अपने पैसे इतने कमा लेता है कि अपना मकान बना लेता है, अपना परिवार बसा लेता है और बड़ी अच्छी तरह से उनका पालन करता है और सांसारिक सुख भोगता है, ये हमको नजर आता है। तो उसको देख के हम भी सोचते हैं मैं भी सीए बन जाऊं, मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी डॉक्टर बन जाऊं तो मुझको भी ऐसा सम्मानजनक जीवन जीने को मिलेगा, आरामदायक जीवन जीने को मिलेगा। इसमें कोई दोष किसी को नजर नहीं आता। लेकिन जिनके पास ये क्वालिफिकेशंस भी हैं, जिनके पास वो पद भी है, वही लोग जो समाज को लूटने लगते हैं। एक एक इंजीनियर के पास जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए निकलते हैं और पता लगता है इसके तो चीफ मिनिस्टर से बड़े अच्छे टर्म्स हैं, इन दोनों की मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक सरकार मिली हुई है उसमें। तब हम बस ये कह देते हैं ये बेईमान है। ऐसा वो क्यों हो गया, क्या कारण है, इसकी खोज भी नहीं करते, समझ ही नहीं आती बात। लेकिन सत्पुरुष इस राज को जानते हैं। वो कहते हैं जो व्यक्ति भी संसार में ज्यादा सुख भोगने की कोशिश करेगा किसी भी मेथड से, जिसको हम साधारण रूप में इंद्रिय सुख कह देते हैं या भोगवादी जीवन कह देते हैं, जो भी संसार में ज्यादा सुख भोगने की कोशिश करेगा, इस वृत्ति को, इस मेथड ऑफ थिंकिंग को भोगवादी जीवन कहते हैं और इसी को अध्यात्म में रजोगुण कहा गया। अब देखिए संसार के लिए कितना प्रिय चीज है रजोगुण। पूरा का पूरा संसार, बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े टेक्नोलॉजिस्ट, बड़े से बड़े प्लैनेट, सब इसी को लक्ष्य लेके चले हुए हैं। चाहे पूरा देश का लक्ष्य लेके चले, आज भारत में भी जिसकी भी सरकार है वहां भी अप्रोच यही कि लोग मैक्सिमम सुखी हो जाएं, मैक्सिमम पैसा अर्न करके, मैक्सिमम एसेट्स खरीद के, मैक्सिमम इंद्रियों के सुख भोग के लोग सुखी हो जाएं। सबकी यही कल्पना है, यही लक्ष्य है, इसी के लिए पुरुषार्थ। जब सारी दुनिया ही इसी में रची पची हुई है तो विचार करो मेरी क्या गलती है, फिर मेरी तो कोई गलती नहीं। लेकिन किसी के अंदर भाग्यवश कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे बने हुए हैं जिसको गुरु का जीवन अच्छा लगता है, शास्त्रों का स्वाध्याय अच्छा लगता है, उनके ऊपर मनन करना गहराई से अच्छा लगता है, ये संस्कार की बात, तो वो फिर शास्त्र पढ़ता है, गुरु के जीवन को बारीकी से देखता है, उसके मार्गदर्शन को बारीकी से देखता है। तो शास्त्र पढ़ता है तो वहां लिखा हुआ है कि रजसा तो फलम दुखम, रजोगुण का परिणाम दुख है, और महाराज जी इसको ही वाणी के रूप में कह रहे हैं, पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। सारा संसार इन पांच विकार में जल रहा है, अर्थात बेचैन है, और इस बेचैनी से बचने का कोई भी रास्ता संसार से होकर नहीं जाता। परमारथ प्रतीत भी नहीं जीव पाए निस्तारा, वो रास्ता ईश्वर से होकर जाता है। इस बात का संसार को पता ही नहीं, उसको पता लगता है जो कुछ संस्कार पूर्व जन्म के लेके आया है और उन संस्कारों के वशीभूत होकर उसके अंदर प्रेरणा पैदा हो रही है, इच्छा पैदा हो रही है शास्त्रों के स्वाध्याय की या किसी गुरु के पास जाने की, उसके जीवन को देखने, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने। उस व्यक्ति को ये बात समझ आती है, तो गीता पढ़ता है ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, रजसाह तू फलम दुखम, रजोगुण का परिणाम दुख है, वो अलर्ट हो जाता है, समझ में नहीं आती उसकी बात ये। लेकिन क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, ये प्रश्न तो बिल्कुल संसार से अलबेला है, पूरा संसार कह रहा है जितने मेहनत कर लोगे, जितनी हायर एजुकेशन अटेंड कर लोगे, जितने अच्छे अच्छे अर्निंग कर लोगे, उतने तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी सुखी हो जाएगी, देश भी खुशहाल हो जाए, सारी दुनिया का निर्णय ये, लेकिन ये गीता का निर्णय तो बिल्कुल उलट है। तो ये विचार उसकी बुद्धि को छोड़ता नहीं, उसकी बुद्धि को पकड़ लेता है, क्योंकि संस्कारी जीव है। इस प्रश्न के उत्तर में उसके 20 साल भी बीत जाते हैं, 25 साल भी बीत जाते हैं, और 10 दिन में भी उत्तर मिल जाता है। ये उसकी PhD का विषय है, इसकी खोज का विषय है, इसका वो गहराई से उत्तर जानने की पूरी कोशिश करता है, इस प्रश्न को छोड़ नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा व्यक्ति यदि किसी गुरु से टकरा गया जो पूर्ण ऋषि है, बनावटी गुरु नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि है, वो साक्षात मनुष्य चोले में ईश्वर है, जैसे महाराज जी की देह, महाराज जी खुद कहते हैं प्रेमी ये खल्लड़ गुरु नहीं है, फिर कौन है गुरु? वो समता व्यास में लिख कर दे रहे हैं, गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है, उनकी वाणी कह रही है, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघार। गुरु क्या बता रहा है? इसका मतलब जो अंदर है, जो अंतर्यामी है, वो क्या वासना सहित होगा? दुनिया की कोई डिजायर उसको टच भी नहीं कर सकती, मान सम्मान भी टच नहीं कर सकता, उसको नहीं चाहिए मान सम्मान, उसको नहीं चाहिए चेले चपाटे। हम जो देखते हैं कि गुरु के चेले होते हैं, गुरु चेले नहीं बनाते। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ये गुरु नहीं बनते। महर्षि रमण कहते थे मैं किसी का गुरु नहीं हूं, ये गुरुओं की बात है। लेकिन फिर भी लोग शिष्य बनते हैं उनके, जिसकी उन पर श्रद्धा आ जाए, उनके मार्गदर्शन में चलना चलने की इच्छा हो, वो कहता है ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका चेला। ये स्वाभाविक गति है। तो महर्षि रमण कहते थे जिसका भाग्योदय होता है उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, उसके पूर्व त्याग के अनुसार प्रभु उसके लिए ये रचना रच देते हैं, किसी गुरु से उसकी भेंट करा देते हैं। तो उस गुरु की पहचान वो निर्वास होता है। एक भी डिजायर कसम खाने को भी उसके अंदर नहीं आप खोज सकते। इसलिए महाजी ने खुद कहा यह बात, जीवन गाथा में आप पढ़ भी लोगे इसको, कि जब तक एक इच्छा भी बाकी है ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह इनके अनुभव की बात है। तो इसीलिए गुरु का जो जीवन होता है ना, शारीरिक जीवन भी, वो इस बात को प्रूव करेगा कि ये इच्छा रहित पर्सनैलिटी, ये पहचान है गुरु। ना उसके कपड़े की बनावट हो सकती है, ना उसकी बातों की बनावट हो सकती है, ना उसके खान पान की बनावट हो सकती है। महाजी का जीवन खुली किताब की तरह से। कई बार तो महाजी भगत जी से कहते थे ओ प्रेमी दो चार लोगों को आ जाने दे तब दूध पिलाना। गुरु का जीवन तो पब्लिक के लिए है ना, अपने लिए थोड़ा ना, अपने लिए तो जीवन पूरा हो गया उसका, वो तो मुक्त रूप है। उनका लोगों के लिए जीवन होता है, तो उनके जीवन में कोई छुपी हुई चीज नहीं होती है, दिखावा नहीं होता, खुली किताब देने से। ओम कपूर जी भी महाराज जी जब देहरादून आए थे तो खुद सुनाते थे, महाराज जी का चेला बनने से पहले मैंने महाराज जी की खोज करनी शुरू करी। रात को महाराज जी जब जाते थे, महाराज जी तो कहीं जहां भी ठहरते थे वहां रात को रहते नहीं थे, वो जंगल में चले जाते थे, खुले आसमान के नीचे रात दिखती थी। तो मैं बोले कि मैं काला कोट पहन के ताकि रात में कुछ दिखाई ना पड़े, और टार्च में वो कपड़ा बांध के केवल थोड़ी सी एक जो है बीम लाइट की निकल रही है उसमें से, महाराज जी जहाँ जाते थे मैं पीछे पीछे दूर से मैं जाकर देखता था कि रात में कहीं कहीं एकांत में बैठे खाते तो नहीं कुछ, ये उनके लिए असंभव सी बात थी कि मनुष्य बिना खाए भी रह सकता है, उनके लिए असंभव असंभव बात थी। तो हर दृष्टि से उन्होंने टेस्ट करके देखा, महाजी का अपमान करके भी देखा। महाजी से बोले, महाजी जब इतने आश्रम थे उस समय मौजूद ऊपर, और हर शाम हर आश्रम के बारे में महाजी का निर्णय यही था कि ये बनावटी लोग हैं, आप जितने भी साधु महात्मा थे महाजी का निर्णय यही होता था जब उनसे डिस्कस करो ये बनावटी लोग हैं। तो ओम कपूर जी ने महाजी से कह दिया आप कौन से अफलातून के बच्चे हैं जो सब आपके लिए बुरे हैं। अब देखो वो गुरु है, ब्रह्म ऋषि है, लेकिन वो इच्छा रहित है, मान से ऊपर है वो। महाजी ने इतना ही कहा प्रेमी ये किसी की बुराई के लिए ऐसा नहीं कह रहे, सत्पुरुषों के दरबार में निर्णय होते रहते हैं, असली नकली का निर्णय करने के लिए ये बात कही जा रही है, किसी की आलोचना करने के लिए, किसी का दोष देखने के लिए ये बात नहीं कही जा रही। खैर उनको वो जी ने जब बात समझी, उनके महाजी के दर्शकों को समझा तो शर्मिंदा हुए, लेकिन अंदर से उनके अंदर ये बात भी आई ये कैसा ऋषि कि मैंने झूठी बात पर इनके इन पे आरोप लगा दिया, इतना अपमान कर दिया, अंदर से बड़ी ग्लानी हुई इनका उनको, लेकिन ऋषि का देखो। तो वही उसका जो जीवन था उसी ने ओम कपूर जी को मजबूर किया उनके आगे माथा टेकने के लिए, उनके आगे समर्पण करने। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी गुरु का यदि टेस्ट करना है तो प्रेमी उसके सिर पर अंगारा रख दोगे तभी उफ नहीं करेगा। ये महाराज जी की बात। तो ऐसा जो निर्वास है, तो यही पहचान है, निर्वास केवल ईश्वर सत्ता है और कोई निर्वास नहीं है। जहां वासना का वास है वो प्रकृति है, तीन गुणों से युक्त प्रकृति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, पांच विकार से युक्त शरीर और संसार है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिनसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विरासत में ही पैदा होते हैं, इनकी उसमें से किरणें निकलती हैं विकारों की। तो जो मनुष्य अपने आप को देह करके जानता है कि मैं देह हूं, बिना देह के मेरा अस्तित्व है ये उसकी बुद्धि में है ही नहीं दूर दूर तक, तो ऐसा मनुष्य चाहे समाज में कितना भी अच्छा मनुष्य क्यों नहीं है, वो विकारी ही है, उसके अंदर पांच विकार ही है। माँ जी कहते थे हर मनुष्य के अंदर एक विकार प्रधान होता है, डोमिनेट करता है, किसके अंदर काम भावना बड़ी प्रबल होती है स्त्रियों के पीछे भागता रहेगा, किसके अंदर लोभ बड़ा प्रबल होता है पैसे के पीछे, पैसे का ही पीर होगा, उसके लिए सब कुछ कर देगा, वो जिंदगी भी भूल जाएगा अपने पैसे। कोई क्रोध का हो अहंकार बड़ा नाम चाहता है, कोई अहंकार का बड़ा शिकार होता है, बस मेरा सोसाइटी में नाम हो जाना चाहिए, उस नाम के लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, हर जगह नेता ही बनना चाहता है, बड़ा ही बनना चाहता है। तो ये पांच विकार में से कोई ना कोई हर व्यक्ति के अंदर डोमिनेट करता है, तो इसीलिए ये जो सांसारिक जीवन है ये विकारी जीवन है। और महाराज जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। अब देखिए आपने तो प्रगति की थी, आपको होश ही नहीं, रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। इसलिए देखा होगा आपने जिन बच्चों को विरासत में बहुत पैसा मिल जाता है, विरासत में नाम मिल जाता है, उनके परिवार के उनके पिता की बड़ी बड़ा नाम होता है समाज में, विरासत में सारे सुख भोग मिल जाते हैं, वो बच्चे बिगड़े हुए निकल जाते हैं। पिता ने तो फिर भी मेहनत करी थी, मेहनत में मशगूल रहा, वो भोगने का इतना मौका नहीं मिला, कमाते ही रहा, इनको तो शुरू से भोगने का मौका मिला है, इसीलिए ये तो टाइम है इनके पास भोगने के लिए, तो भोगेंगे तो बिगड़ेंगे, स्वाभाविक बात। तो इसीलिए जिसने भी संसार को ज्यादा भोगा है, ज्यादा सुख भोगे हैं, वो इन पांच विकारों की कमाई करके संसार से चला है। तो जिस मनुष्य को ये आध्यात्मिक तालीम मिलती है, पूर्ण गुरु पर विश्वास मिलता है, उसका आसरा मिलता है, या पूर्ण गुरु से भेंट ही हो जाती है, दो ही श्रेणी के दुनिया में लोग होते हैं, या तो पूर्ण गुरु के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, या उन पर विश्वास, उन पर श्रद्धा आ जाती है, ये अपने अपने भाग्य की बात है। कोई कितना भाग्य लेके आया है वो डिसाइड करेगा, लेकिन मुक्ति मार्ग के राही दोनों बनते हैं, ईश्वर प्राप्ति की गारंटी दोनों लोगों के लिए, चाहे पूर्ण गुरु पर श्रद्धा आइए, श्रद्धा का मत होता है उसके हर वचन हर जीवन के घटना के बारे में वो बारीकी से चिंतन करता है, क्योंकि महाजी कहते हैं प्रेमी, एक दिन समता विलास के बारे में कह रहे थे प्रेमी महाजी, एक प्रेमी ने कहा महाजी इतने शास्त्र भारत में उपलब्ध हैं, आपने एक और रचना कर दी, तो महाजी बोले प्रेमी इन्होंने ये गीता लिखी, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो अपने जीवन पर उसको घटाया ना हो, इसका तो समता विलास यदि समझनी है तो गुरु के जीवन को देखना पड़ेगा बारीकी से, कंपेयर करना पड़ेगा दोनों, हर सिद्धांत जो समता विलास में लिखा हुआ है वो गुरु के जीवन से प्रकट होगा, इसका सीधा समझ। इसका मतलब गीता क्या संदेश दे रही है, वाणी क्या संदेश दे रही है, समता विलास क्या संदेश दे रही है, एक ही निर्णय है सारे शास्त्रों का, सारे ऋषियों का, कि जो भी इसके अनुसार जीवन बनाएगा उसका जीवन निर्वास हो जाएगा। निर्वास का मतलब मन के अंदर कामना की एक तरंग भी उठना बंद हो जाए, एक तरंग भी। उसके लिए रामायण कह रही है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मुझको पा लेता है। इसी को राम कुछ परमल कह रहे हैं, निर्मल मन निर्मल बुद्धि और आत्मा एक ही चीज है। इसीलिए जो साधक है जिसका मन निर्मल हो चुका है उसकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, संकल्प रहित हो जाती है। और जिसकी बुद्धि संकल्प रहित होती है तो उस समय उसको सृष्टि का बोध नहीं होता। सृष्टि के रोम रोम में जो रमा हुआ है, जो खुद सृष्टि रूप बना है, उस ब्रह्म का बोध उसको होता है, उस आत्मा का बोध उसको होता है। ये घटना तभी घट सकती है जब मन निर्मल हो जाए, संकल्प रहित हो जाए। अब बताइए जिसकी मन में इतनी इच्छाएं उठती हैं और आप अपने दैनिक जीवन में आप अनुभव करते हो कि जरा किसी ने अपमान ही कर दिया, भले ही आपने कोई उसका बुराई नहीं की, गलत फहमी के कारण ही उसने आपका अपमान कर दिया, दो चार गालियां भी सुना दी, आप जब सिमरन में बैठोगे आप देख लो मन की क्या हालत। प्रभु को भी कहोगे आप यही कहोगे, प्रभु मैंने गलती तो कोई नहीं की, इतना अपमान क्यों हुआ? ऐसी आग आपके अंदर लगती है, उस अहंकार को, उस अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसी कोई नुकसान हो जाता है, आपका बिजनेस का नुकसान होता है, सर्विस का कोई नुकसान होता है, हफ्तों निकल जाते हैं सिमरन में मन ही नहीं लगता, वो नुकसान ही आता है, सहन ही नहीं कर पाते आप। लेकिन महाराज जी का पूरा गंगो किया, जहां उनका आश्रम बना था, जहां उनका घर था, सब उजड़ गया, वो वैसे के वैसे, देश भी उजड़ गया, देश भी छूट गया। इसका मतलब शास्त्रों का विवरण और सत्पुरुष का जीवन ये सिद्ध कर रहा है, ये मार्गदर्शन कर रहा है कि जो मनुष्य जितनी ज्यादा गहरी वासना में फंसा हुआ है, डिजायर्स में फंसा हुआ है, वो मनुष्य उतना ही ज्यादा गहरे अंधकार में जी रहा है, गहरी अज्ञानता में जी रहा है, गहरे पतन के साथ जी रहा है। यदि दो मनुष्यों की तुलना की जाए तो अच्छा मनुष्य वो नहीं है जिसके पास पैसा ज्यादा है, जो ऊंचे पद पर है, अच्छा मनुष्य वो है जिसके अंदर वासना कमजोर है, जो केवल शरीर की रक्षा के लिए भोजन ग्रहण करता है, शरीर की रक्षा के लिए अपना गृहस्थ कर्तव्य कर्म करने के लिए कम से कम कमाने की कोशिश करता है। क्यों कम से कम? क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है, उस वक्त को उसने ईश्वर सिमरन में खर्च करना है, निष्काम सेवा में खर्च करना है, सत्कर्म में खर्च करना है, उसको मालूम है समय की कीमत तो ये है, समय तो इस वास्ते मिला है मानव जन्म का, मैं कैसे कमाई में खर्च कर सकता हूं, वो बड़ा होश में होता है। इसीलिए जब वो देखता है कि मेरी इनकम इतनी हो गई कि मेरा गुजारा आराम से चल सकता है, कहता है मुझे कमाने की जरूरत नहीं। अब देखो गुरु का मार्गदर्शन, बड़ी सादी सादी बातें होती हैं कि गुरु के मार्गदर्शन से पता लगता है। एक रिक्शा वाला महाजी के पास आया, ये अम्बाला की तरफ की ही बात है, महाजी तो बाहर शहर के बाहर रहती है तो कोई बात नहीं, कभी मरगढ़ के पास हैं, कभी कहीं हैं, उस दिन महाजी बैठे हुए थे, एक गरीब सा आदमी उनके पास आके बैठा, बोला महाराज जी मेरा ये मार्गदर्शन करिए। अब देखो फकीर तो भेदभाव करते नहीं किसी के साथ में, बोले वो प्रेमी तुम क्या करते हो? बोला महाराज जी रिक्शा चलाता हूं। तुम्हारा कितने में गुजारा हो जाता है? बोला माँ जी लगभग 3 रुपए में मेरा गुजारा हो जाता है। उस समय की बात है, सस्ता जमाना था। अच्छा तो तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो, ईश्वर के मार्ग पर, तो फिर अपना समय निर्धारित कर लो। मान लिया सुबह 8 बजे तुम रिक्शा चलाना शुरू करते हो, जब तुम्हारे पास 3 रुपए हो जाए उस समय तुम रिक्शा चलाना बंद कर देना और ईश्वर का भजन करना, जो भी मार्गदर्शन महाराजी ने किया होगा। अब देखिए एक रिक्शा वाला है, उसकी क्या प्रोटेक्शन है संसार में, उसके लिए गुरु क्या कह रहा है कि 3 रुपए हो जाए तो रिक्शा मत चलाना, फिर भजन करना। अब गुरु ने एक, हम कह सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति को ईश्वर परायणता सिखा दी, कोई शास्त्र का उपदेश नहीं दिया, ईश्वर पर निर्भर होना सीखो। तेरे जीवन का रक्षक ईश्वर है, तेरे जीवन में जितने सुख आएंगे जितने दुख आएंगे, इस देह से जितने कर्म होने हैं वो ईश्वर डिसाइड करेगा, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। उस प्रारब्ध के अनुसार देह की रक्षा भी ईश्वर करेगा, उसकी व्यवस्था भी ईश्वर करेगा, परिस्थितियां भी ईश्वर पैदा करेगा, वो ईश्वर का काम है, सारी सृष्टि ईश्वर के हाथ में। तो उसी को भूले बैठे हुआ, अपने को चतुर समझता है, देखो मैंने कितना बुद्धिमान हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कितना अहंकार है तेरे अंदर, हर चीज जो अच्छी कर लेता है उसका अहंकारी अहंकारी होता है, देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं। तू यदि अच्छा इंसान है तो इसका मतलब है तू गहरे देह के अहंकार में फंसा हुआ है, तेरी बुद्धि में ये बात बड़ी मुश्किल से बैठेगी कि तू जीव है, इस देह के अंदर कैद है, एक देह की कैद और एक तेरे मन की कैद, इन दो कैद में तू खुद फंसा हुआ है, इस इन दोनों कैद से मुक्ति के लिए तूने गुरु धारण किया है। इसलिए जब साधना रत होता है जीव तो देह और मन की कैद से ही मुक्त होता है, और क्या होता है, जीते जी वो सत्पुरुष बन जाता है। महाजी ना मन की कैद में है ना तन की कैद में, हम इन्हीं दोनों की कैद में जी रहे हैं, ईश्वर का मुख बोध ही नहीं, फिर भी इतना अहंकार। तो हमने अपने ऐबों का अहंकार है, हमको विचार तो करो जरा, कैसा मनुष्य हूं मैं, मुझको अपने ऐबों का अहंकार है। रिक्शा वाले को महाजी कह रहे हैं, प्रेमी 3 रुपए हो जाए तो रिक्शा मत चलाना, हमारी कमाई का कोई अंत ही नहीं, मुझे पता है मेरा बैंक बैलेंस इतना है कि मेरे जो सामने पीढ़ी है इसके लिए कोई कमी नहीं है। तभी कमाई पड़ोगे, होश ही नहीं है, गुरु मैंने क्यों धारण किया था, क्या कहा था गुरु ने, जिंदगी के जो 5 विकार का जीवन है इसको मैंने सिंप्लीफाई करना था, इसलिए महाजी ने सादगी का सिद्धांत सबसे पहले दिया, योग मार्ग की बात बाद में की, सबसे पहला सिद्धांत सादगी का दिया उन्होंने कि मनुष्य यदि शौकीन मिजाज है संसार में तो यह इस मार्ग पे चलने लायक ही नहीं है, वो तो पात्र ही नहीं है। रिक्शा वाला तो पहले से ही सादा है, वो क्या सादा करेंगे उसको आप, उसको ईश्वर परायणता सिखाई गुरु, ये तेरा रक्षक ईश्वर है। महाराज जी को गरीब मिला था, जब भगत जी से कहा महाराज जी बनारसी इसको 2 रुपए दे दे, तो बोला प्रेमी तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है इतनी तनख्वाह में, तो कहता है अल्लाह राजा है। महाराज जी बड़ा खुश, देखो इस गरीबी में भी इसको इस खुदा की याद है, रोटी देने वाला वो है, शरीर की रक्षा वो करेगा, बुद्धि कितनी होश में है, और हम लोग सब कुछ होते हुए भी देवी के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में जा जाके माथे टेक देते हैं, इच्छाएं प्रकट करते रहते हैं, प्रसाद चढ़ाते रहते हैं, ये भी इच्छा पूरी हो जाए, वो भी पूरी हो जाए। तो संसारियों की सोच ऐसी ही है, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, संपूर्ण प्रकृति ऐसी ही। यदि प्रकृति की बात करें तो खुद ही अध्यात्म में लिखा हुआ है कि प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण तो जानते ही हैं, जो आम पापी लोग होते हैं आप कह सकते हो, या आम गिरे हुए लोग होते हैं, तमोगुणी लोग होते हैं जो दूसरे के सुख पे भी डाका डाल के उसको छीन ले। आम जो पैसों में और सुख भोगों में रचे पचे लोग होते हैं, ये रजोगुणी लोग हैं। और जिनको ईश्वर का होश होता है, इस तमोगुण से रजोगुण से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, वो सतोगुणी लोग होते हैं, वो भक्त लोग होते हैं। ये प्रकृति, ये तीनों चीज प्रकृति है, तो प्रकृति का स्वरूप ही तो प्रकृति ईश्वर की है, ईश्वर की लीला है, इसको ईश्वर का ऐश्वर्य कहा जाता है। प्रकृति ये ईश्वर का ऐश्वर्य है, तो उसके ऐश्वर्य में ही जब ये तीन गुण हैं तो किसी का क्या दोष है, किसी का कोई दोष नहीं। इसीलिए हम दोष देखने संसार में नहीं आए किसी को, हम दोषों से मुक्त होने आए। गुरु हमने इसलिए धारण किया है कि मैंने दोषों से मुक्त होना। इसलिए महाराज कहते हैं प्रेमी किसी की ऐबजोई मत कर। यदि किसी के अंदर परिवर्तन आएगा तेरे त्याग बल से आएगा, तेरे प्रेम से आएगा, तेरी ऐबजोई से नहीं आने वाला। तू कौन होता है किसी की ऐबजोई करने वाला, तेरा काम नहीं है लोगों की कमी देखता घूमे। तो जिसको अंदर का होश होता है, शास्त्रों का होश होता है, बारीकी से इन पे गहरा मनन जो करता है, वो गुरु की छोटी छोटी बातों पे भी बड़ा गहरा विचार करता है, अपने को दुरुस्त करता है। दूसरों को दुरुस्त करने का ठेका नहीं लेता वो अपने को दुरुस्त करता है, क्योंकि उसको ये मनुष्य देह प्रभु प्राप्ति के लिए दी गई है। यहां से उसकी बुद्धि हटती नहीं है यदि वो गुरु भक्त है, गुरु प्राण है। प्रभु के स्मरण कारण ये दुर्लभ जीवन पाए, ये दुर्लभ जन्म भी मैं लोगों के सुधार में व्यतीत कर दूं इसको मैं। तो लोगों को सुधारता नहीं है, वो परोपकारी कर्म करने की कोशिश करता है निष्काम रूप में, उसका अहंकार नहीं करता मैं परोपकारी आदमी, निष्काम रूप में, क्योंकि गुरु ने कहा है कि स्वार्थ भावना तेरे अंदर यदि तुझने कम करनी है तो इसके लिए तुझको दूसरे के दुख दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ भी तन मन धन से, क्योंकि विचार भी एक चीज है जिससे मनुष्य किसी की सेवा कर सकता है, तो तन मन धन से जिसका जो भी तो कष्ट निवारण कर सकता है, जिसकी सहायता कर सकता है निष्काम रूप में। गुरु बनने का भाव रखे नहीं कि मैं इसका गाइड बनूंगा, गाइड नहीं, तो गाइड तो प्रभु ही, तो अपना ऐब दूर करने के लिए तो सेवा करता है। ये जो तेरा परोपकारी कर्म है ये तेरे अंदर विकारों की कमी करता है और मन की सफाई करता है। तेरा मन इस लायक हो जाता है कि जब सिमरन में बैठता है तो मन उसमें लगता है प्रभु के नाम। सारा गुरु का जो मार्गदर्शन है वो एक ही है कि धीरे धीरे इस प्रकार का जीवन अपनाओ, ये पांच विकार आपके अंदर कम होते चले जाए, कम होते चले जाए, कम होते चले जाए। और यदि थोड़ी भी अकल लड़ा के देखो सब चीज समझ में आ जाएगी, कोई बहुत गहरी चीज नहीं है भाई। सतमार्ग पे चलना एक वे ऑफ लाइफ ही तो है। संसारी जीवन क्या है, इन पांच विकारों की कमाई करना। राइट वर्ड यूज किया है तो ये है, संसारी जीवन क्या है, इन पांच विकारों की कमाई करना, ये संसारी जीवन है। और आध्यात्मिक जीवन क्या है, इन पांच विकारों को धीरे धीरे कम करते जाना। ये आध्यात्म है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जानता है आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, उससे छुपता कुछ भी नहीं, वो जानता है कि अपने जीवन में वो यही कर रहा है। वो इसीलिए वो किसी से ईर्षा द्वेष ये नहीं करता। वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या मार कर रही है उसमें ये बात नहीं होगी। चार दिन उसके संग रह के ही पता लग जाएगा, उससे इन बातों से वास्ता ही कोई नहीं होता। उसको पता है कि सारी प्रकृति इन पांच अवगुणों में फंसी हुई है, सारे लोग फंसे हुए हैं, सारे जीव फंसे हुए हैं, इसमें बुराई क्या है? तो नेचुरल चीज है भाई। इसीलिए वो खुद उनसे बचने की कोशिश करता है और परोपकार के रूप में वो ऐसी क्रिया करता है कि और लोगों को भी ये विकार दिखाई पड़ने लगे और वो भी इनको कम करने की धीरे धीरे कोशिश करें। तो इसीलिए जो सतमार का राही है वो जानता है यदि मेरा हर वर्ष इन विकारों की कमी करने में नहीं बीता तो ये वो कैंसर रोग है, कैंसर तो इसी जन्म में मारता है, ये वो कैंसर है जो इस जन्म में भी मारेगा अगले जन्म में भी मारेगा मुझे। इस कैंसर के जो कण हैं या पार्टिकल्स हैं या वायरस है या बैक्टीरिया जो भी है वो मन के अंदर सुरक्षित रहता है और ये मन देह की मौत के साथ खत्म नहीं होता। तो मन के अंदर, इसी मन के द्वारा मेरे नए शरीर का निर्माण होगा, नई परिस्थितियों का निर्माण होगा, नया वातावरण का निर्माण होगा और वहां प्रारब्ध भी मुझको ऐसा ही मिलेगा। तो वहां मेरा जीवन बचपन से ही विकारों वाला जीवन होगा। तो ये कैंसर मुझे वहां भी मारेगा। इसलिए माई कहते प्रेमी दो जहान की तैयारी तूने करनी है, ये जहान जिसमें जी रहा है, फिर अगला जहान जो तुझे प्राप्त होने वाला है वो तुझे प्राप्त होगा। ये जन्म में ईश्वर प्राप्ति हो गई तो कोई बात नहीं हुई तो अगले जन्म का भी तुझे तैयारी करनी है, क्योंकि तू वही रहेगा, तेरा मन भी वही रहेगा, तेरा ईश्वर भी वही रहेगा और तीनों इस देह के अंदर मौजूद है। तू भी इस देह के अंदर मौजूद है, तेरा मन भी इस देह के अंदर मौजूद है, तेरा ईश्वर भी इस देह के अंदर मौजूद है। तू इस देह के चक्कर में पड़ा हुआ है। देह तो मंदिर है, ये उपासना घर है। क्यों नर मोह मंदिर में सोया, वाणी तो याद दिला दी थी। ये मोह मंदिर है, इसको स्वरूप समझे बैठा हुआ है, ये उपासना घर है, प्रभु इसके अंदर विराजमान है, तू इसके अंदर विराजमान, इससे अच्छा मौका कौन सा मिलेगा। तूने मन संसार से हटाना है, इस देह से हटाना है, करतार में लगाना है, तो कहां लगाया पड़ा हुआ है इसको, लोगों की आलोचना में लगाया पड़ा हुआ है, उनमें ऐब नजर आ रहा है तुझको, तुझे इतनी फुर्सत कैसे है? जिस मन को इसमें लगाएगा तू ईश्वर में कैसे लगाएगा, जब विचार करके तू देख, इसलिए कहां भटक रहा है तू, इसलिए अलर्ट होने की जरूरत है। गुरु ने बात की है सेवा की तो निष्काम सेवा की बात की है, यहां से लेश माती मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहां केवल देना ही देना। तूने दे दिया, तेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तू समाज का ठेकेदार नहीं। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी अपनी नहीं भेड़, अपना सुधार कर, तू दुनिया का ठेकेदार नहीं। तो ये व्यक्ति बड़ा अलर्ट रहता है, बड़ा होशियार रहता है, हर पल इसको अपने पर इसकी सख्त निगाह रहती है। तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र का गहराई से चिंतन करता है कि गुरु अंदर जाने की बात कह रहा है। गुरु कह रहा है मैं अंतर्यामी हूं, मैं खुद अंदर मौजूद हूं। गुरु का जो अंदर का रूप है उसी का नाम ईश्वर है। मैं खुद अंतर्यामी, मेरा मन खुद अंतर्यामी, मेरा ईश्वर भी अंतर्यामी, मेरा गुरु भी अंतर्यामी, मैं बाहर कहां भटक रहा हूं। तो जो संसार की क्रिया भी इस प्रकार करता है कि मन अंदर जाने में सहायक सिद्ध हो, वो जागरूक इंसान है, वो सिमरन में सफलता प्राप्त करता है, अंतर्यामी प्रभु के आनंद का अनुभव करता है और अपने इस मानव जीवन को सफल करता है और इस 5 विकार के कैंसर से मुक्ति प्राप्त करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।